ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரமாத்மா கோ லகா ரஹி ஸ்ருதி அப சப்கா நிஷேத கர்கே லகா ரஹி அகலே வாலே மந்திர மே சப்கா நிஷேத கரேகி. யதோ வா இமானி பூதானி ஜாயந்தே ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி அபிசம்சந்தி பிரயந்தி தத்விஜிஜ்ஞாசஸ்வ தத்ப்ரஹ்ம தத்விஜிஜ்ஞாசஸ்வ. தடஸ்த லட்சண கே மாத்யம் சே தடஸ்த லட்சண கே மாத்யம் சே ஸ்ருதி அபி ஆப்கோ பதா ரஹி தி. வஹாம் பி வருண கே பிரசங்க மே யஹி பாத் பதாயி கயி தி கி ஜிஸ்ஸே ஸ்ருஷ்டி உத்பன்ன ஹோதி ஹை ஜிஸ்மே ஸ்தித் ரஹதி ஹை ஔர் ஸ்ருஷ்டி ஜிஸ்மே விலீன் ஹோ ஜாதி ஹை வோ பரமாத்மா ஹை தத் விஜிஜ்ஞாஸஸ் உஸி பரமாத்மா கோ ஜானோ. தோ யஹாம் யே இத்னா சுந்தர் உதாரண, இத்னா நாராயண காவ்யபூர்ண உதாரண ஔர் கிசி கிரந்த மே ஆப்கோ நஹி மிலேகா. ஜெய்சே அக்னியா ஹோத்தி ஹை சின்காரியா ஹோத்தி ஹை வோ அப்னே ஸ்வரூப் சே சப் ஏக ஹி ஹோத்தி ஹை. இசி பிரகார் உபாதி ஹி கேவல் பேத கோ உத்பன்ன கர்த்தி ஹை. ஏக ஔர் சமஜ் லீஜியே கி யதி ஆப்கே மன மே யே சங்கா ஹோவே கி பாய் யதி ஹம் சப் பரமாத்மா ஹி மானே கி சப் குச் பரமாத்மா ஹை தோ யே வ்யவஹார் கைசே சலேகா. व्यवहार में तो सब अलग अलग होते हैं ना. पिता है अलग होता है, पुत्र अलग होता है, माता अलग होती है, पत्नी अलग होती है, और सब ब्रह्म माने तो ना रहे. तो ये भेद जो है ना, भेद है, ये भेद सिर्फ ये बता रहे हैं कि व्यवहारिक है, व्यवहारिक है. भेद पारमार्थिक नहीं है. जो लोग इस भेद को पारमार्थिक समझते हैं, उसी परमार्थ को निवृत्त करने के लिए ये बात बताई जा रही है कि जो आपके मन में ये बात आ रही है कि ये अलग है परमात्मा से, सो परमात्मा से अलग नहीं है. जैसे यहां देखो, ये एक भवन है, सत्संग भवन है, इसमें कहीं ऑफिस बना रखा है, कहीं संत निवास बना रखा है, कहीं रसोई बना रखी है, कहीं कर्मचारियों के कमरे बने हुए हैं. तो यहां जो ये भेद हो रहा है कमरों का, सिर्फ व्यवहारिक है, नहीं तो प्रेमपुरी आश्रम तो एक ही है. यदि इस व्यवहार के भेद को सत्य मान ले तो मैं जहां रह रहा हूं और मैं समझ लूं कि मेरा कमरा है तो बात ठीक नहीं है. नारायण नारायण नारायण. ये प्रेमपुरी है, प्रेमपुरी आश्रम है, प्रेमपुरी का है सभी नारायण. ये हमारा कुछ नहीं है. यहां तो केवल व्यवहार भेद व्यवहार के लिए है, ना कि पारमार्थिक भेद है. पारमार्थ में तो सब ये एक ही का है, माने आश्रम ही है. इसी प्रकार से यहां भी जो भेद होते हैं वो सब व्यवहारिक होते हैं, पारमार्थिक नहीं होते हैं, उपाधि से भेद होते हैं. तो आप अब देखिए, ये मंत्र ये सब का निषेध करके, अद्भुत मंत्र ही है, निषेध करके निषेध मुखेन परमात्मा का ज्ञात मंत्र कराता है. देखिए, दिव्यो ही मूर्तयः पुरुषः सबा ही अभ्यंतरो अजः ह्यजः प्राणो ही मनाः शुभ्रो हो ह्यक्षरात् परतः परः. देखो, परमात्मा दिव्य है. इसकी दिव्यता क्या है? आप तो कहते हो ना, बहुत जगह कह देते हो कि ये आदमी दिव्य है, ये देवता दिव्य है, ये सब दिव्य है. तो इसकी दिव्यता क्या है? इसकी देखिए दिव्यता ये है कि ये दोतनवान और स्वयं ज्योति, स्वयं माने अन्य प्रकाश निरपेक्ष स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अन्य जितने भी ज्ञान होते हैं उन ज्ञानों को किसी ना किसी की अपेक्षा होती है। जैसे ये देखो मैक रखा हुआ है, तो मैक को जानने के लिए प्रकाश की जरूरत है, कि बिना प्रकाश के मालूम हो जाएगा नहीं वो। अच्छा तो मैक है और एक प्रकाश है, और इसके जानने के लिए केवल प्रकाश पर्याप्त तो नहीं है, इसमें आग भी होनी चाहिए। अपने प्रकाश के लिए इसको अपेक्षा है ज्योति की और आंख की, दो की अपेक्षा। और यदि प्रकाश को ही सिर्फ प्रकाशित करना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? मैक की नहीं, आंख की। सिर्फ आंख से प्रकाशित हो जाएगा क्या प्रकाश? पर ये वस्तु ऐसी नहीं है, ये वस्तु तो तीन से प्रकाशित, दो से प्रकाशित होगी, दीप प्रकाश भी हो और आंख भी हो तभी मालूम पड़ेगा। इसको प्रकाशन करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, और ये जो इसमें प्रकाश है इसको प्रकाशित करने के लिए एक की आवश्यकता है। किसकी? आंख की। और आंख को प्रकाशित करने के लिए मैं की आवश्यकता है, फिर मैं ही तो जानूंगा कि मेरी आंख ठीक है कि नहीं ठीक है, और कौन जानेगा? प्रकाश थोड़ी जानेगा, इस प्रकाश की जरूरत नहीं है, इस मैक की जरूरत नहीं है, आंख की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो तो नहीं मालूम पड़ेगा कि हम हैं क्या? ये विश्वलिंगा है ना, सुदीप्त है ना ये। और ये मैं को भी कोई प्रकाशित करता है कि नहीं करता है? मैं को भी कोई प्रकाशित करता है, जो मैं ये वृत्ति उठती है, मैं अमुक है, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, इस प्रकार की वृत्ति का प्रकाशक कौन है? कोई है कि नहीं? नारायण। अब उसको कौन प्रकाशित करता है? कोई नहीं। अच्छा, मैं की जब निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि आप यदि मैं के पीछे ना समझ रहे हो कि कोई और है, तो जब मैं की निवृत्ति हो जाएगी, ना तो ये प्रकाश प्रकाशित कर रहा है, ना मैक प्रकाशित कर रहा है, ना आंख प्रकाशित कर रहा है मैं की निवृत्ति को, तो अब मैं ये नहीं स्फुरित हो रहा है, तो ये मैं के अभाव का कोई साक्षी है कि नहीं? प्रकाशक है। तो ये देखो, वो जो है ना, वो दिव्य है, दिव्य है, दिव्य। उसकी दिव्यता यही है कि वो अन्य प्रकाश निरपेक्ष है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है जी। तो ये जितने भी प्रकाश हमारी इंद्रियों में आते हैं, ये सब इसी कोटि में आते हैं। मेरे कान है, दिग देवता है, शब्द विषय है, दिग के सहायता से शब्द को कान पकड़ता है, लेकिन ये कान में ज्ञान उसी का प्रकट हो रहा है। ये भी आप समझिए, उदाहरण के लिए कि एक खुर्दबीन होती है, दूरबीन होती है, लंबी सी होती है, उसे ऐसे लगा के देखते हैं बाहर के नक्षत्रों को, बाहर के ग्रहों को, बाहर की वस्तुओं को, जो सूक्ष्म वस्तु होती है, और दिखते हैं। किसी सूरदास जी को दे दो, सूरदास जी को दूरबीन है तो बता देगा कि ये वस्तु यहां घूम रही है? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। सूरदास जी नहीं बताएंगे, आंख वाले बताएंगे ना। तो आंख होगी वही ना बता सकेगा कि ये खुद दूरबीन लगा के, खुर्दबीन लगा के आंख वाला बताएगा कि ये चीज यहां घूम रही है, सूक्ष्म वस्तु है। तो ये आपकी आंख भी दूरबीन है, ये इसके माध्यम से कोई देखने वाला दूसरा होगा जो प्रकाश रूप होगा। तो आप कम से नीचे वहीं साक्षी में लौट आएंगे। ये दिव्य है, इसकी दिव्यता इसी में है। और ये बोलते हैं कि यह अमूर्ता है, ये मूर्ति नहीं, मूर्त नहीं। जिसकी विपत्ति आचार्यों ने ऐसे भी की है कि दंडम मस्यास्ति दंडी, जो दंड दिए रहता है उसको क्या कहते हो, दंडी कहते हो। और जिस मूर्त में आकृति हो उसको क्या कहें, मूर्ति कहें। एक मूर्त होगा, अरे भाई दंड लेने वाला कोई दूसरा है कि नहीं, तब तो दंडी बनेगा। उसके हाथ में दंडा होगा तो वो दंडी हो जाएगा। दंडम अस्यास्ति, या दंड अस्मिन अस्यास्ति, दंड जिसमें है या दंड को जो लिए हुए है। तो मूर्ति का मतलब होगा मूर्त में मूर्ति हो गए, आकृति हो गए तो मूर्ति हो गई। इसमें ये मूर्ति ही नहीं है, किसने, ये जो दिव्य है, दिव्य पुरुष का वर्णन जो कर रहे हैं, तो इसमें तो मूर्ति है, मूर्ति ही नहीं है, आकृति ही नहीं है जी। लो, अरे प्रकाश की कोई आकृति थोड़ी होती। अच्छा, चिद की कोई आकृति होती, चिद की नहीं होती। आनंद की कोई आकृति होती है, नहीं होती है। आनंद की कोई आकृति नहीं होती, चिद की कोई आकृति नहीं होती है। अचिद में सत्ता है कि नहीं, चिद सत्ता ना होगी, उसमें सत्ता ना होगी तो चिद फिर शून्य हो जाएगा, सत्ता ही नहीं उसमें। अच्छा, आनंद में सत्ता है कि नहीं, आनंद में सत्ता है। तो सत्ता होने पर भी, अर्थात सत्ता होने पर भी आनंद और चिद दोनों नहीं मालूम पड़ते हैं, इनकी कोई मूर्ति नहीं है, अमूर्त है। अच्छा, अब आप देखिए, ये दुनिया में जितनी मूर्ति दिख रही हैं, नारायण की मूर्ति दिख रही हैं, विष्णु भगवान की मूर्ति दिख रही हैं, ये सब दिव्य हैं कि नहीं। लेकिन हाँ सही है, यदि दिव्य होगी तो मूर्ति का निषेध कर रहे हैं, वो दिव्य नहीं हो सकता। आप नाराज न होइएगे, एक बार मैं साधना सदन में नारायण प्रस्थान के पाठ में सम्मिलित था, मैं यही बात कह दिया तो लोग कहते हैं बहुत अप्रसंगिक बोल रहे हो, बताओ आप क्या करें, क्या बोलें। ठीक कह रहे हैं, जब मूर्ति का निषेध कर रहे हैं कि वो मूर्ति ही नहीं है, तो जो मूर्ति होगी ना, जिसकी मूर्ति होगी, सकल होगी ना, वो दृश्य होगी। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विष्णु भगवान केवल आपका दृश्य ही है, नहीं, उसमें चिद भी तो है ना। तो जितना अंश है, मूर्त है, वो तो दृश्य हो गया, और जितना अंश दृश्य नहीं है वो दिव्य परमात्मा हो गया। तो ये उपाधियां जो होती हैं, ये उपाधियों से ही अलग मालूम पड़ता है, क्योंकि उपाधि अपने गुण को दिव्य पुरुष को दे देती है, दिव्य वस्तु को दे देती है। जैसे उदाहरण के लिए कि एक घटा आकाश है, एक मठा आकाश है, एक गलियों का आकाश है, एक आपके नाक का आकाश है, एक कान का आकाश है, एक नाड़ियों का आकाश है, एक पेट में आकाश है, एक मुंह में आकाश है, जहां पानी घुसेरते हैं। नारायण नारायण नारायण। घटाकाश, घट को बनाया है, घट में जो आकाश है वो पैदा नहीं हुआ है, पैदा तो उसकी उपाधि हुई है। कौन है? घट। घट उपाधि है, आकाश उसमें उपहित है, उपहित पैदा नहीं हुआ है, घट पैदा हुआ है। घट अपनी परिच्छिन्नता अपने अंदर आने वाले आकाश को दे दी है, घट ने घेर लिया है। घटना परिच्छिन्न है कि आकाश परिच्छिन्न है? घट परिच्छिन्न है। घट परिच्छिन्न का मतलब है कि घट किसी दायरे में है, काल या देश या आकृति के दायरे में घट है। तो घट ने अपनी जो परिच्छिन्नता है, अपना जो घेरा है, वो आकाश को दे दिया है। अब आप सोचते हो कि आकाश इतना ही बड़ा है, आप क्या किया जाएगा इसमें? आकाश इतना बड़ा नहीं है। इसी प्रकार से उपाधि का अर्थ होता है, देखो और भी समझ लीजिए। उपाधि का मतलब होता है, उप माने समीप होता है, अवाधि माने आधत्ते, अपने गुण को जो आधान कर दे वो अपने पास वाली वस्तु में। जैसे यहां स्फटिक मणि रखी हो, यहां स्फटिक मणि रख दो यहां, तो ये उपाधि होगी, उसमें अपना गुण लालिमा प्रकट कर देगी या पीलिमा प्रकट कर देगी स्फटिक मणि में। स्फटिक मणि में किसी भी प्रकार का रंग नहीं है, पर यहां रख दोगे तो ये अपनी अपना रंग इसमें डाल देगी, फिर रंगी सी मालूम पड़ेगी। इसी प्रकार से जो ये विस्फुलिंग निकले हुए हैं, तो ये अंतःकरण की उपाधि से, अब चाहे उसे आप बिंब प्रतिबिंबवाद मानो, चाहे अवच्छिन्नवाद मानो, चाहे दृष्टिसृष्टिवाद मानो, पर यहां जो उपाधि है, जो तंग वस्तु है, वह अपनी वस्तु असीम में डाल देगी। जैसे आपसे ये कहा कि भई ये आकाश है, आकाश तो असीम है और घड़े ने इसको सीमित कर दिया, इसी प्रकार चेतन है जो मूर्त है, ये मूर्त में आ जाएगा। मेरे नारायण, नारायण खड़ा है ना यहां आपका, यहां नारायण यदि मूर्ति में आ जाएगा तो व्यापक नहीं रहेगा ना, फिर जो आप मूर्ति में देखेंगे, सिर्फ मूर्ति में देखेंगे तो इसकी व्यापकता नहीं समाप्त हो जाएगी। यदि अपने से इस अमूर्त पदार्थ को अलग देखेंगे, क्योंकि मूर्त जो होगी वह दृश्य होगी, तो वह जड़ होगी, वह परिच्छिन्न होगी, वह नष्ट होगी, इस प्रकार के उपद्रव से युक्त तो ये चेतन है नहीं। चेतन का तो स्वभाव है सिर्फ जो सामने आवे प्रकाशित कर दे। तो यदि उसे आप मूर्ति मानते हो, फिर अनंत भी कहते हो, तो आंख बंद करके, बुद्धि को बंद करके ही तो हम बात कह रहे हैं। इस परमात्मा की कोई आकृति नहीं है, कोई सीमा में देश की या काल की या वस्तु की, न काल परिच्छेद है, न इसमें देश परिच्छेद है, न इसमें वस्तु परिच्छेद है, न 10-50 वर्ष का है, न 10-5 किलोमीटर का है, न 2-4 किलो का है, ये तो परिच्छेद है। तो ये अमूर्त है, सिर्फ अमूर्त है, कहां रहता है अमूर्त? दिव्य भी है, अमूर्त है, इतना समझ में आ गया, लेकिन वो रहता फिर कहां है? नहीं, तो ये बोलते हैं कि देखो पुरुषहा, पुरुषहा का जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है पुरुषहा, शब्द पर आप ध्यान दो, पुरुष का अर्थ ये नहीं होता है जो आप जिसको पुरुष कहते हो। शास्त्र में पुरुष का अर्थ ये जो 3.5 हाथ का हार चाम का जो शरीर है, ये पुरुष नहीं। पुरुष का मतलब होता है पुरुषेते या पूर्णत्वात, ये भी व्युत्पत्ति किया है, जो पूर्ण हो, माने जिसकी पूर्णता शास्त्रों बृहस्पति भी वर्णन ना कर सके, वो पूर्ण परमात्मा। और समस्त चींटी से लेकर के ब्रह्म पर्यंत जो विद्यमान हो, अब यदि इसको पुरुष में नहीं मानोगे, यदि अपना स्वरूप नहीं मानोगे, ये पूरी शरीर इसमें जो सो रहा है इस पूरी से तो भिन्न ही होगा ना, तो इसमें तो दो ही चीजें हैं, दृश्य है और दृष्टा है। तो यदि हमारे से ये पृथक होगा ये पुरुष आपका, तो क्या हो जाएगा? तो दृश्य होगा, जड़ हो जाएगा, हमारे को छोड़ करके यदि अलग होगा, आप सोचो। तो हम जिसको प्रकाशित करेंगे, यदि हमारे से भिन्न होगा ये पुरुष, तो हम प्रकाशित करेंगे तो हमारी चेतना से अलग होगा, हमारी चेतना इसको प्रकाशित कर रही है तो ये जड़ होगा। इसलिए हमको छोड़ करके पूर्ण नहीं है। लोग तो सोचते हैं कि परमात्मा पूर्ण है और हमारे से वो अलग है, पृथक है। स्वभाव पहले इसका समझ लीजिए, ये सिर्फ दृष्टा है, दृष्टा। मैंने अभी कल इस पर प्रवचन महाराज श्री ने किया है, श्री स्वामी खन्ना जी महाराज ने, तो मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई जो आपको सुना देता हूं। बोले कि हरि बाबा थे, हरि बाबा वो प्रवचन कर रहे थे किसी पुस्तक से, और बोले बड़े विनोदी थे, उन्होंने पुस्तक बंद कर दी। पुस्तक बंद करके बोले कि भाई गिरिराज की परिक्रमा करते हो कि नहीं करते हो? बोले हाँ हम करते हैं। तो बोले गिरिराज को हमने सुना है कि चिन्मय है वो। बोले हाँ हाँ हमारा चिन्मय तो है ही है वो। शिव बोले कैसे, हमको जरा समझाओ, हमारी समझ में नहीं आता है। बोले महाराज जी बोलते हैं कि वो परिक्रमा करने वाले व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, हम ये सोच रहे थे इतने में एक व्यक्ति आया और पत्थर में पत्थर मारा तो खून निकल पड़ा। ये चेतन की परिभाषा हो गई। क्या हो गई? खून निकल आया। तो आपका शरीर भी चेतन हुआ कि नहीं? हाथी भी चेतन हो गया, हाथी का शरीर भी चेतन हो गया, उसमें भी तो खून निकलता है। तो किसी में इंद्रिय हो है वह चेतन है, किसी में खून निकल गया हुआ वह चेतन है। ये सब परिभाषाएं वेदांत की नहीं है। ये सब इंद्रिय आदि जो हैं, ये इंद्रियों में जो प्रकाश प्रकट हो रहा है जिसका, वो चेतन है। आप यहां देखा होगा गरबा होता है, गरबा हम कई बार देखे खंबाद में, वो लड़कियां होती हैं तो एक कच्ची सी भड़िया रहती है, यही रहती है ना, और उसमें छेद रहते हैं और ऊपर नीचे दीपक रखा रहता है उसके अंदर, और फिर उसे ढक्कन से ढक देते हैं। अब कोई कहा है कि देखो भाई ये मटकी है किस कैसे प्रकाश को फेंक रही है जी? अरे नहीं, ये मटकी प्रकाशित नहीं हो रही, नहीं तो फिर कुम्हार के घर में भी प्रकाशित सब होती हैं। ये प्रकाश किसी दूसरे का बाहर छेद से छिटक रहा है, उस पर तो व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती है। दृष्टि कहां जाती है? भटकी में, मटकी में जाती है, जो छोटी सी भड़िया हुई मिट्टी की। इस प्रकार से ये भड़िया है, ये शरीर है ना, ये भड़िया है, ये मटकी का पात्र है। इसमें जो प्रकाश छिटक रहा है उस परमात्मा का छिटक रहा है, वो चेतन है, सिर्फ दृष्टा है। उसके स्वरूप को बिना समझे व्यक्ति कहीं भी चेतन का आधान कर लेगा, किसी को भी चेतन मान जाएगा, वो सिर्फ दृष्टा है, दृष्टा। पुरुषा सबाही अभ्यंतर ही अजहा, वो बाहर भी है और अंतर भी, अंदर भी हो जी। अब देखो ये विरोधी बातें हैं ना, जो बाहर होगा, आप भीतर हैं कि बाहर? भीतर हैं। अब आपको हम कहें कि ये बाहर भी हैं भीतर भी हैं तो कैसे होगा? जो बाहर होगा भीतर नहीं होगा, जो भीतर होगा वो बाहर नहीं होगा। तद्देजत तन्नेजत तद्दूरे तदवंत के, वो चलता है नहीं चलता है, पास में है वो दूर है, ये सब क्या बातें हैं? ये दोनों विरुद्ध धर्म है, ये इस चेतन में रहते हैं जी। इसीलिए तो आप कहते हो ना, पूर्ण मदह पूर्ण मिदम इदम पूर्ण अदह, वह पूर्ण है ये पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है वो भी पूर्ण है जी, परमात्मा भी पूर्ण है, ये कैसे हो सकता है? तो आप देखिए उस मंत्र को छोड़िए, यहां ये सबाही अभ्यंतर है, वो बाह्य भी है और अंदर भी है, क्योंकि आकाश जी घड़े के बाहर भी है भीतर भी है। लेकिन एक आपको शंका हो सकती है कि घड़े में जो ये कपाल है ये इसमें तो नहीं है। एक पूरा समय तो हो गया, लेकिन एक सेकेंड में आपको बता दूं कि ये जो घड़ा है ना, ये घड़ा, ये बाबा आकाश ही है। इसे आप क्या समझते हो? आप मिट्टी समझ रहे हो ना, ये घड़ा भी आकाश ही है। नहीं तो यदि आकाश से कोई भिन्न दूसरी चीज होगी तो आकाश की व्यापकता नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आकाश की व्यापकता नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं, मैं विचार से कह रहा हूं कि आकाश आदि वायु आदि क्रम से घट भी आकाश ही है। जैसे उदाहरण के लिए बाष्प, क्या हो, बाष्प होती है, बाष्प जानते हो ना, बाष्प पहले उठती है, वो थोड़ी सी ठंडी हवा पा करके फिर जल हो जाता है, फिर जल थोड़ा और ठंडी प्राप्त किया तो बर्फ हो गया, और बर्फ और बहुत दिन तक पड़ा रहा तो रत्न हो गया। अब इनमें भेद हुआ कि नहीं? पहले बाष्प थी, उसमें चलने में सुगमता थी, थोड़ी सी कठिनाई जल में आई चलने में, और यदि बर्फ में कोई घुस गया तो जैसे इनके भेद प्रभेद नारायण है, बाष्पादिक्रम से ये रत्न भी क्या है, जल ही है, रत्न हो जाता है, ठोस रत्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इस तत्व के संबंध में समझना। अगला प्रसंग आपकी सेवा में कल, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।